16 दिसंबर रविवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली जाकर कांग्रेस को जमकर कोसा।
हमारे विरोधी उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की कमान भूपेश बघेल के हाथों में सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ की जनता का विश्वास लेकर, सबको विश्वास में लेकर कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे पुनः प्रधानमंत्री बने, पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, और सुनिए गौतम गंभीर को किस बात का है मलाल।
मुझे हमेशा लगता है कि जिस तरीके का मैं इंडिविजुअल हूँ, आई थिंक आई वुड हैव बीन फार बेटर इन द आर्मी एज कंपेयर टू बीइंग अ क्रिकेटर।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री के उद्घाटन के अलावा कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खुद को न्यायपालिका और देश से ऊपर मानने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। रविवार को विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम की घोषणा की। राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर वो सोमवार को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ लेंगे। पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में शनिवार को हुए समझौते की पर्यावरण समूहों और कुछ देशों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि यह समझौता जलवायु परिवर्तन के खतरनाक स्तर को रोकने के लिए नाकाफी है। इस समझौते का मकसद 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने के लिए नियम बनाना है, लेकिन ग्रीन पीस की निदेशक जेनिफर मॉर्गन का कहना है कि ये रिपोर्ट नैतिक रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि इसमें संसाधन विहीन देशों के हितों की अनदेखी की गई है। मिस्र के राजदूत ने कहा है कि रिपोर्ट में विकासशील देशों को दोयम दर्जे पर धकेल दिया गया है। जेनिफर मॉर्गन ने कहा,
I think governments of the world have forgotten the most vulnerable countries.
मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन की आपात स्थिति से निपटने के संबंध में दुनिया की सरकारों ने अपना लक्ष्य नहीं बढ़ाया और ऐसा करके वे सबसे कमजोर देशों और लोगों को भूल गई हैं। पेरिस समझौते की नियमावली तो उन्होंने बना ली है जो पहला अच्छा कदम है, लेकिन हमें यहाँ इससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। ये थे ग्रीन पीस की निदेशक जेनिफर मॉर्गन के शब्द। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर पर आरोप लगाया है कि वो दूसरे जनमत संग्रह की मांग करके ब्रेक्जिट की वार्ताओं को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को उनकी ओर से किया गया दखल ब्रिटिश लोगों और प्रधानमंत्री कार्यालय का अपमान है। हालांकि ये सामने आया है कि टेरेसा मे के डिप्टी डेविड लिडिंगटन ने विपक्षी सांसदों से मुलाकात की है जो मौजूदा गतिरोध को सुलझाने के लिए दूसरे जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। ब्रेक्जिट मंत्री लॉर्ड कैलिनन ने भी दूसरे जनमत संग्रह से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा,
The Prime Minister and the government have been absolutely clear. She was adamant again last night.
प्रधानमंत्री और सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। पिछली रात भी उन्होंने साफ कहा कि दूसरा जनमत संग्रह नहीं होगा और उसकी वजह बहुत सरल है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में से एक था। सरकार ने इस पर 9 मिलियन पाउंड खर्च किए थे और लोगों से कहा था कि ये आपका फैसला है और आप जो तय करेंगे सरकार उसे लागू करेगी। ये थे ब्रेक्जिट मंत्री लॉर्ड कैलिनन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक शुगर फैक्ट्री में एक बॉयलर फट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये धमाका निरानी बंधुओं की फैक्ट्री निरानी शुगर्स लिमिटेड में हुआ। निरानी बंधुओं में से एक मुरुगेश निरानी भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। श्रीलंका में जारी राजनीतिक उठापटक में अब रानिल विक्रमसिंघे ने फिर से प्रधानमंत्री पद पर वापसी की है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद रविवार को उन्होंने फिर से पद की शपथ ली। विक्रमसिंघे के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद इस द्वीपीय देश में जारी राजनीतिक संकट के भी समाप्त होने के संकेत मिले हैं। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को अस्थायी बजट लागू करने के लिए 1 जनवरी से पहले संसद की मंजूरी लेना आवश्यक था और इसी वजह से उन्हें अपना रुख बदलना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने चरमपंथी हमलों के उन 15 दोषियों की सजाए मौत को हरी झंडी दे दी है जिन्हें सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया था। 20 और चरमपंथियों को कैद की सजा सुनाई गई है जिन्हें सुरक्षा बलों, ईसाई समुदाय और शैक्षिक संस्थानों पर हमलों का दोषी पाया गया था। सेना की ओर से जारी बयान में ये नहीं बताया गया कि इन दोषियों को मौत की सजा कब दी जाएगी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के चुनावी क्षेत्र रायबरेली में एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के विस्तार के अलावा कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया। सुनिए रायबरेली से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री में स्थित कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री भले ही करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंचे हों, लेकिन वहां मौजूद उनके समर्थक उत्साह और जोश का प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब एक घंटे के भाषण में कुछ समय अपनी और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
मेडिकल कॉलेज जैसी वो सारी परियोजनाएं जिनका थोड़ी देर पहले लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वो आप सभी के जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करने वाला है।
तो बाकी हिस्सा जैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक प्रहार के लिए आरक्षित कर रखा था। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसा, खासकर सेना, देशभक्ति और रक्षा सौदों के मामले पर।
जिन्हें भारत माता के जयघोष से दिक्कत है, जिन्हें देश की परवाह नहीं है, साथियों मोदी को उन्हें गाली देनी है। आप मुझे बताइए भाइयों, हमारे देश की सेना ताकतवर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की सेना सामर्थ्यवान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सेना के हाथ में आधुनिक हथियार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमारे विरोधी उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो हमारी सेनाओं को मजबूत नहीं होना देना चाहते। ऐसे लोगों की कोशिशों को किन किन देशों से समर्थन मिल रहा है, ये भी देश देख रहा है।
प्रधानमंत्री की रायबरेली में ये पहली रैली थी। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े पेश किए और इन सब के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का कहना था कि अब तक रायबरेली में विकास के कार्य या तो हुए नहीं थे या फिर धीमी गति से, लेकिन रैली में मौजूद स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना था।
देखिए, आज जो मोदी जी का भाषण था वो पूरी तरह से राजनैतिक था। मोदी जी के रही बात भाषण की, तो उनका भाषण फुल पैक्ड एक ड्रामा की तरह जो होता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो उन्होंने किया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि लोकल लोगों को रोजगार ना मिलना रेल कोच फैक्ट्री से, वो अभी बना हुआ, वो समस्या अभी बनी हुई।
लोकल लोगों को रोजगार तो जरूर मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला
है।
और ये डेवलपमेंट, ये हम लोग बहुत जब प्लांट लगा था ना, तब से आए हुए हैं। मोदी जी ने ये बात बिल्कुल सही, पहले प्लांट लगा था लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। जब बीजेपी सरकार आई उसके बाद से यहाँ पे फंड मिला और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ।
हम मोदी जी के काम से बहुत ही खुश हैं, बस हमें पेंशन दिलवाएं मोदी जी, यही रिक्वेस्ट है उनसे। और काम हुआ है, काम हुआ है, लेकिन मोदी जी के आने से और भी हुआ है, बढ़ा है काम। बस
कानपुर से निकली हुई रोड लालगंज तक आती बस पूरा ऐसे चलती थी ऐसे, आज देखो उस बस को जो है बिल्कुल बराबर चलती है, और जो रास्ता हम चार घंटे में तय करते थे आज दो घंटे में तय करते हैं।
मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं अपनी जगह पर, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन यही है जो पशु आवारा घूम रहे हैं इसी से किसान परेशान। रेल कोच सोनिया गांधी तो बनवाई है, ये तो गलत बोल रहे हैं कि सब कुछ
है। अरे वो कहना अपनी अपनी पार्टी का मूड है, कोई कुछ भी कह सकता है, बुराई तो कर ही सकता है, उस पर किसी की जबान पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। बहरहाल जो कुछ भी किया सोनिया गांधी, राजीव गांधी, उन्हें के परिवार ने ज्यादा से ज्यादा किया पूरे क्षेत्र के लिए।
वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री की आलोचना की है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिस मंच पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद हों, उसे राजनीतिक पार्टी की रैली के तौर पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं। बहरहाल रायबरेली के बाद प्रधानमंत्री प्रयागराज के संगम क्षेत्र पहुंचे और वहां भी उन्होंने रैली को संबोधित किया। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी रायबरेली।
और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी जिस जगह पर भाषण दे रहे थे उससे कुछ दूर कांग्रेस पार्टी की महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। चलिए छत्तीसगढ़। कांग्रेस के भीतर काफ़ी विचार विमर्श के बाद आज आखिरकार तय हो गया कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
रायपुर से लेकर दिल्ली तक पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ कई कई दौर की बैठकों के बाद शनिवार को ही छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल का नाम तय हो गया था, जिस पर रविवार को विधायक दल की औपचारिक मुहर लगाई गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव को इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत और सांसद ताम्रध्वज साहू के नाम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन भूपेश बघेल इन तमाम दावेदारों को पीछे छोड़ने में सफल रहे। रविवार को विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने रायपुर में उनके नाम की घोषणा की।
तो दिक्कत बराबर के जब होते हैं तो उसमें चुनने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए राहुल जी बोले कि सभी ने तो काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा रिजल्ट दिया, इसीलिए सारे लोगों को उन्होंने धन्यवाद किया और चार नेताओं से भी बातचीत करने के बाद वो अंतिम फैसला हमें सुनाए कि बात आप विधायक दल के सामने रखिए। तो आज विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें हमने राहुल जी का जो संदेश था, जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष श्री भूपेश बघेल हैं, उनको विधायक दल का नेता चुना जाए।
अपने नाम की घोषणा के बाद पत्रकारों से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सरकार 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी और बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का फैसला लेगी।
किसानों के लिए जो बातें कही है, नौजवानों के लिए जो बातें कही है, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, उन सब काम को हमको करना है।
छत्तीसगढ़ में माओवाद की समस्या को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि वे सभी लोगों को विश्वास में लेकर इस मुद्दे पर काम करेंगे।
चुटकी बजाते कोई हल नहीं कर सकता, बहुत उनके पैर जमे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ की जनता का विश्वास लेकर, सबको विश्वास में लेकर कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
2014 में भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी की कमान उस समय सौंपी गई थी जब बस्तर की झीरम घाटी में संदिग्ध माओवादियों के हमले में कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेताओं समेत 29 लोग मारे गए थे। भूपेश बघेल शुरू से ही इस मामले में षड्यंत्र की बात कहते रहे हैं।
झीरम में ये हम लोग शुरू से मानते रहे हैं कि राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये घटना घटी है। पहले ही कैबिनेट में जहां ऋण माफी की घोषणा की जाएगी, 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी का निर्णय लिया जाएगा, वहीं झीरम के लिए भी SIT गठन की घोषणा की जाएगी।
रविवार को भूपेश बघेल के नाम की घोषणा के साथ ही इस बात की भी चर्चा होती रही कि पार्टी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर उठे मतभेद के कारण भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष रहे TS सिंहदेव को 2.5-2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला सामने रखा है। मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार TS सिंहदेव ने पत्रकारों से कहा कि सभी साथ मिलकर काम करेंगे।
मुख्यमंत्री वो है जो छत्तीसगढ़ के लिए काम करेगा। 5 साल के लिए हम लोग 68 के 68 विधायक जो हैं, ये साथ में मिलकर काम करेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे, बस यही एकमात्र फॉर्मूला है।
भूपेश बघेल ने अपने नाम की घोषणा के साथ ही सरकार बनाने के लिए राजभवन जाकर अपना पत्र सौंपा है। सोमवार को रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में वे शपथ लेंगे, जहां पिछले 4 दिनों से तैयारी चल रही है। लेकिन फिलहाल तो रायपुर से लेकर अंबिकापुर तक कांग्रेसी जश्न में जुटे हुए हैं। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
श्रीलंका में 2 महीने से जारी राजनीतिक उठापटक आज थम गई सी लगती है। वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। 2 महीने पहले अक्टूबर में राष्ट्रपति सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था, लेकिन उनकी जगह प्रधानमंत्री बनाए गए महिंदा राजपक्षे संसद में बहुमत नहीं जुटा पाए। ज्यादा जानकारी वात्सल राय की जुबानी।
අද අපි කැප වෙන්නේ පළමුවෙන්ම රටේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ඇති කළා
करीब 7 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री पद पर वापसी करने वाले रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ लेते ही श्रीलंका के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो देश में सामान्य स्थिति बहाल करेंगे और विकास कामों को दोबारा शुरू करेंगे। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने अक्टूबर के महीने में विक्रमसिंघे को एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत हटा दिया था। उनकी जगह पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन विक्रमसिंघे लगातार दावा करते रहे थे कि वैधानिक तौर पर वो ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। संसद से लेकर कोर्ट तक राष्ट्रपति सिरीसेना को झटके लगे और कल राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजपक्षे कह रहे थे कि आम चुनाव के बिना मेरा प्रधानमंत्री बने रहने का कोई इरादा नहीं है, मेरा राष्ट्रपति को परेशान करने का भी मकसद नहीं है, मैं इस्तीफा देकर नई सरकार के लिए रास्ता बना रहा हूँ। राष्ट्रपति सिरीसेना का दावा था कि वो विक्रमसिंघे को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी जिद छोड़नी पड़ी। राष्ट्रपति ने नवंबर में संसद भंग कर तय वक्त से करीब 2 साल पहले चुनाव कराने का ऐलान किया था, लेकिन श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। उधर राष्ट्रपति को अस्थायी बजट लागू करने के लिए 1 जनवरी से पहले संसद की मंजूरी लेनी जरूरी थी और इस वजह से उन्हें अपना रुख बदलना पड़ा। ये 5वां मौका है जब विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, हालांकि वो अब तक एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं। आज हुए शपथ समारोह में मीडिया को नहीं बुलाया गया था, इसमें विक्रमसिंघे के गठबंधन के कुछ ही नेता शामिल थे। शपथ ग्रहण के बाद विक्रमसिंघे के समर्थकों ने आतिशबाजी की और जश्न मनाया। श्रीलंका में करीब 2 महीने से जारी सियासी संकट पर भारत और चीन समेत दुनिया के कई देशों की नजर थी। विक्रमसिंघे को हटाए जाने को लेकर कई देशों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन अब श्रीलंका में सियासी संकट के समाधान की उम्मीद की जा रही है।
श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे दोबारा प्रधानमंत्री बने, भारत ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है। रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं गौतम गंभीर से, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय ओपनिंग की कमान संभालने के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इससे आगे की बात सूर्यांशी पांडे के साथ।
आज हम गौतम गंभीर के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान के बारे में जानने आए हैं, लेकिन उससे पहले ये जो खूबसूरत सी ट्रॉफियां यहाँ पर सजी हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा खूबसूरत ट्रॉफी कौन सी है और क्यों?
I'm sure ICC टेस्ट प्लेइंग टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की है, वो सबसे ज्यादा स्पेशल भी है, बिकॉज मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज उससे अच्छा फॉर्मेट कुछ भी नहीं है और उससे ज्यादा टेस्ट आपके कैरेक्टर का, आपकी टेक्निक का, आपके टेम्परमेंट का किसी और फॉर्मेट में नहीं होता। जब आप ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बनते हैं, उससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं।
यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक ये बैट भी है विद अ सिग्नेचर। सबसे ज्यादा बल्लेबाजी करने में किसके सामने डर लगता था? कौन सा ऐसा बॉलर था जो आपको बहुत ही खतरनाक लगता था?
मुथैया मुरलीधरन। मैंने उनको पूरी जिंदगी पिक नहीं किया और सबको लगता था कि मैं उनको पिक करता हूँ, बट सच्चाई ये थी कि मैंने उनको बहुत कम पिक किए और मैंने रन बनाए उनके अगेंस्ट, इसलिए सबको लगता था कि मैं उनको हाथ से पिक करता हूँ, बट ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैंने बहुत टाइम इसलिए भी सिर्फ इंस्टिंक्ट्स के तरीके से खेला है।
तो अगर हम आगे बढ़े, ये IPL चैंपियंस 2014 जब KKR का मूवमेंट था, तो सबसे बेस्ट मूवमेंट ये आपका था IPL?
बिल्कुल, सबसे ज्यादा बेस्ट मूवमेंट था, बिकॉज इस 2014 IPL में मैंने पहले 3 मैच में 3-0 बनाए थे, चौथे मैच में 1 रन बनाया था दुबई में, और उसके बाद देन जब मैं वापस आया था तो हमारे को 9 मैच लगातार जीतने थे और टूर्नामेंट जीतने के लिए हमने 9 मैच लगातार जीते और मैंने 450 लगातार बनाए और हम 2014 में जीते। इमेजिन करो, किसी ने पहले 4 मैच में 1 रन बनाया और 3-0 बनाया, उसके बाद हमने वो टूर्नामेंट जीता, तो इसलिए 2014 बहुत ज्यादा स्पेशल था।
तो सेकंड बेस्ट ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो कौन सी रहेगी आपके लिए?
आई थिंक पॉली उमरिकर ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर थे, BCCI ने आपको दी थी 2008-2009 में, और बहुत कम खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी मिली है।
तो ट्रॉफियों के जरिए हमने गौतम गंभीर के रिकॉर्ड्स की कहानी जानी है। गौतम गंभीर ने हाल ही में रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है, लेकिन फैंस के दिलों में कभी भी वो रिटायर नहीं होंगे। तो चलते हैं, जानते हैं रिटायरमेंट के कल, आज और कल की कहानी उन्हीं की जुबानी। गौतम गंभीर का बिगेस्ट सैटिस्फैक्ट्री मोमेंट कौन सा था और बिगेस्ट रिग्रेट कौन सा था ऑन द फील्ड?
देखिए, बिगेस्ट सैटिस्फैक्ट्री मोमेंट तो यही था कि जब आप ऐसी अचीवमेंट्स करते हैं, जब आप सीबी सीरीज जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब आप वर्ल्ड टी20 जीतते हैं, जब आप 2011 वर्ल्ड कप जीते हैं, जब आप न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीते हैं, साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करते हैं, आज तक किसी और टीम ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं ड्रॉ करी, आई थिंक 40 से 45 साल बाद हम न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीते। बट अगर आप रिग्रेट बोलेंगे, एक ही रिग्रेट है, बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि जिस तरीके का मैं इंडिविजुअल हूँ, आई थिंक आई वुड हैव बीन फार बेटर इन द आर्मी एज कम्पेयर टू बीइंग अ क्रिकेटर।
2015 का जो वर्ल्ड कप था, आप उसके अंदर नहीं शामिल हुए, तो उस बात का मलाल है और किस पर गुस्सा है?
एब्सोल्युटली, आई थिंक जब आप 2011 में जीतते हो तो हर खिलाड़ी ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको मौका मिलेगा कि वो वर्ल्ड कप को डिफेंड कर सके, और उस 2015 की टीम में आई एम श्योर कि 2012-2013 तक जिस तरीके से मैं वनडे क्रिकेट में रन बना रहा था, मुझे लगता था कि मैं 2015 का वर्ल्ड कप खेलूंगा, बिकॉज वो मेरी ड्रीम थी। अगर आप बाकी खिलाड़ियों को देखें तो सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 या 3 वर्ल्ड कप खेले 50 ओवर्स, मैं ही शायद एक अकेला ऐसा खिलाड़ी हूँ जिसने सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप खेला 50 ओवर का और विनेड ऑफ विनिंग।
तो 2007 और 2011 में देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स, इसमें आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था और सबसे ज्यादा आपको अगर याद किया जाता है तो इन दोनों वर्ल्ड कप के लिए याद किया जाता है। लेकिन आप ही के पैरेलली धोनी को भी इन दोनों वर्ल्ड कप के लिए याद किया जाता है क्योंकि कप्तान वो थे, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे कम याद किया जाता है और धोनी को ज्यादा?
बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक अगर मैन ऑफ द मैच आपको मिले या ना मिले, इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज वो सिर्फ एक ट्रॉफी है जो आप अपने कैबिनेट में रख सकते हैं। जब लोग आपके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, उससे बड़ी ट्रॉफी कोई भी नहीं हो सकती, और अल्टीमेटली आप किस अपनी परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाई होते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी ट्रॉफी है। अगर आप अभी देखें, विराट कोहली को हर सीरीज का ज़्यादा क्रेडिट मिलता है एज कम्पेयर टू अदर खिलाड़ी। इससे पहले एम एस धोनी को मिलता था, उससे पहले सौरभ गांगुली को मिलता था, बिकॉज इंडिया में टीम सिर्फ कप्तान की होती है। तो अगर कोई टीम जब कोई टूर्नामेंट जीती है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ कप्तान ही जीत, कप्तान ने ही वो टूर्नामेंट जिताया या वो सीरीज जिताई है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये कह सकते हैं कि आप क्रिकेट के एंग्री यंग मैन थे?
देखिए, पता नहीं एंग्री यंग मैन, बट हाँ, बहुत पैशन से खेला और कोई रिग्रेट नहीं, जिससे भी मेरी ऑन फील्ड हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई, बिकॉज दो रोबोट्स तो खेल नहीं रहे। अल्टीमेटली आपके इमोशंस, आप ह्यूमन हो, कई बार आपके इमोशंस निकल भी जाते हैं, एंड वैसा वैसा अगर किसी और ने भी मेरे ऊपर अपने इमोशंस निकाले, देयर इज नथिंग रॉन्ग अनलेस कि वो पर्सनल हो, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, चाहे वो मेरी किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट हुए हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शेन वॉटसन हो, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, बिकॉज अल्टीमेटली वो आर्ग्यूमेंट्स कोई पर्सनल नहीं थे, वो आर्ग्यूमेंट सिर्फ इसलिए थे कि मैं अपनी टीम को जिताना चाहता था, और वैसे ही वो भी अपनी टीम को जिताना चाहते थे।
ऑन फील्ड अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपकी केमिस्ट्री होती थी वीरेंद्र सहवाग के साथ, साझेदारी में बात कर लो या फिर जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स होता था, वो भी बहुत कमाल का, आप दोनों के बीच एक अलग सा तालमेल था। लेकिन ऑफ द फील्ड आप दोनों किस तरह का एक बॉन्ड शेयर करते थे आपस में?
देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ वीरेंद्र सहवाग के साथ ही बहुत दोस्ती थी, आई थिंक मेरी युवराज सिंह से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, हरभजन सिंह के साथ बहुत दोस्ती थी, अमित मिश्रा, ईशान शर्मा, मुनाफ पटेल, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वीरेंद्र सहवाग के, हाँ ऑब्वियसली जब आप इकट्ठे ओपन करते हो और इतने साल इकट्ठे ओपन करते हो तो सबको ये लगता है कि हाँ आपकी बहुत खास दोस्ती है, बिकॉज दोनों दिल्ली से आए हैं, दोनों दिल्ली स्टेट के लिए भी खेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वही अकेले मेरे दोस्त थे। बट मैंने एक चीज़ ज़रूर बोली और बिलीव करी है कि इस इंडियन ड्रेसिंग रूम में ही नहीं, अगर इस दुनिया के किसी भी ड्रेसिंग रूम में अगर आपकी सबसे बेस्ट कंपनी कोई है तो वो हरभजन सिंह है, बिकॉज जब तक हरभजन सिंह ड्रेसिंग रूम में है, आई थिंक आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है वो वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे अच्छे कैरेक्टर हैं।
ट्विटर पर जब लोग आपके ट्वीट्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं तो अमूमन ये कयास लगाए जाते हैं कि आप बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको बिल्कुल एकदम कंप्लेन करते हैं।
बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने जो लास्ट ट्वीट किया था तो उसमें बीजेपी को भी टैग किया था, और उससे पहले जो ट्वीट किया था अगर आप देखें मेरे ट्विटर हैंडल तो उसमें भी मैंने बीजेपी को टैग किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कंप्लेन करता हूँ, वही तो कंट्रोल में है, वही तो पावर में है। अगर कांग्रेस पावर में होती तो आप कांग्रेस को ब्लेम करते।
लेकिन क्या बल्ला छोड़कर आप सदरी पहनने वाले हैं, क्या नेतागिरी में घुसने वाले हैं?
देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई भी सोच नहीं है, और आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, सिर्फ आपको पावर नहीं चाहिए जहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, आपके पास बहुत और भी तरीके हैं कि जहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर ज़िंदगी में कोई भी, मैं ये नहीं कहता मैं, अगर कोई भी पॉलिटिक्स में जाता है तो उसका सिर्फ एक एम्बिशन होना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में जाए चीज़ें ठीक करने के लिए, रबर स्टैम्प बनने के लिए नहीं, यस मैन बनने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी यस मैन बन के कुछ भी नहीं किया।
मैं तो जिस तरह से आपको अभी परसीव कर पा रही हूँ, मैं यही जान पा रही हूँ कि आप एक्चुअल में बहुत इंटेंस और गंभीर है, लेकिन जब आप घर पर रहते हैं तो घर पर आपका किस तरह का माहौल रहता है अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ?
देखिए, बहुत अच्छी टचवुड, बिकॉज एक तो फैमिली फ्रेंड्स थे, तो मेरे डैड और नताशा के डैड हैड नोन ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो हम मिलते रहते थे एक दूसरे से, 2 साल का कोर्टशिप पीरियड भी चला, 7 साल की शादी हो गई, तो वी नोन ईच अदर फॉर लास्ट 10-11 ईयर्स। सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर ऑब्वियसली अपने दोनों बच्चों के साथ खेलना है, बिकॉज अभी जिस एज में वो हैं तो इट्स ऑलवेज ग्रेट फन। मेरी बड़ी बेटी 4 साल की है, मेरी छोटी बेटी 1.5 साल की है, उससे अच्छी एज नहीं है उनके साथ खेलने के लिए।
आप अपने दोनों बच्चों से सबसे खास बात क्या सीखते हैं?
आई थिंक ज़्यादा ना सोचना और खुश रहना।
वाइफ की सबसे अनॉइंग हैबिट?
टेलीविजन नहीं देखती और मूवीज नहीं देखती, एंड आई लव वॉचिंग मूवीज।
सबसे फेवरेट मूवी?
तारे ज़मीन पर।
सबसे फेवरेट एक्टर?
आमिर खान।
ड्रेसिंग रूम की सबसे नॉटी बात जो आपको पता है?
मेरे को बहुत कम चीजें पता होती थी, बिकॉज मैं खुद इतना इंटेंस था, चीजें उनको पता होती है कि जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं।
ये थे गौतम गंभीर और उनसे बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता सूर्यांशी पांडे। और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आज विश्व कप हॉकी का फाइनल मुकाबला चल रहा है।
जी हाँ बिल्कुल, ये आखिरी मुकाबला, लेकिन अंतिम क्षणों तक यहाँ पर टीमें चैंपियन बनने के लिए लड़ेंगी और फाइनल खेला जा रहा है बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच। लेकिन जैसा कि आपको मालूम ही है कि तीसरा क्वार्टर चल रहा है और इसमें भी दोनों टीमें अभी तक गोल रहित बराबरी पर हैं। नीदरलैंड्स साल 1973, 1990 और 1998 की विजेता टीम है और बेल्जियम तो पहली बार फाइनल खेल रही है। लेकिन संदीप जी, कमाल की बात है कि इस बेल्जियम ने पिछले 2 साल में बहुत तरक्की की है। रियो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंची और ये वही बेल्जियम है जिसने भारत को रियो ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल में हराया था और इस विश्व कप में वो भारत के ग्रुप में थी और भारत उससे 2-2 से बराबरी पर खेला। भारतीय टीम का अभियान तो क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हुआ, लेकिन भारत के ग्रुप की टीम बेल्जियम फाइनल में है। अभी सांसें थाम कर देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन इससे पहले जब तीसरे स्थान का मुकाबला था तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बता दिया कि हॉकी किसे कहते हैं। पिछली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया दरअसल सेमीफाइनल में हारकर बाहर हुई तो उसने पूरा गुस्सा इंग्लैंड पर उतारा और उसे 8-1 से हरा कर तीसरा स्थान हासिल किया।
ये बताइए आदेश जी कि पीवी सिंधु ने आज इतिहास रच दिया, ये खबर आई है।
जी हाँ बिल्कुल, पीवी सिंधु ने चीन में आज समाप्त हुए वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया और ये इस साल का उनका पहला खिताब था। फाइनल में उनके सामने थी जापान की बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाली नोजोमी ओकुहारा, लेकिन ऐसा लगता है कि पीवी सिंधु इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार फॉर्म में थी और उन्होंने अपनी जीत की लय को लगातार बरकरार रखते हुए आज 21-19, 21-17 से इस फाइनल को अपने नाम किया। और कमाल की बात है कि वो इस साल कितने फाइनल में पहुंची लेकिन नहीं जीती। राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में वो साइना नेहवाल से हारी, इंडियन ओपन, थाईलैंड ओपन, विश्व चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के फाइनल में हारी, लेकिन देखिए अंत कितना शानदार, अंत भला तो सब भला।
और उधर पर्थ की हरी भरी पिच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें टेस्ट मैच में आमने सामने है, वहाँ पर क्या हो रहा है?
जी देखिए, ये जो घसियाला विकेट है ये किसके पक्ष में जाएगा कहना बहुत मुश्किल, लेकिन फिलहाल बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ये मुकाबला पहुँच चुका है क्योंकि आज जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 132 रन बना लिए थे, जबकि इससे पहले भारत की पहली पारी 283 रन पर समाप्त हुई और भारत के कप्तान विराट कोहली ने 123 रन बनाए। और उसके बाद गावस्कर और जो वहाँ पूरी कमेंट्री टीम थी उन्होंने कहा कि विराट कोहली शायद इस इराक के एक ऐसे आखिरी खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच में इतना शानदार खेल रहे हैं, क्योंकि जो वनडे का असर है वो सब पर नज़र आ रहा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 175 रन से आगे है क्योंकि पहली पारी के आधार पर उसे 43 रनों की बढ़त मिली थी। अब देखना है कि वो कितनी चुनौती भरा लक्ष्य भारत के सामने रखते हैं,
देखना होगा। आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के उद्घाटन के अलावा कुछ और परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खुद को न्यायपालिका से ऊपर मानने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में शनिवार को हुए समझौते की पर्यावरण समूहों और कुछ देशों ने आलोचना की है। उनका कहना है कि यह समझौता जलवायु परिवर्तन के खतरनाक स्तर को रोकने के लिए नाकाफी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर पर आरोप लगाया है कि वो दूसरे जनमत संग्रह की मांग करके ब्रेग्जिट की वार्ताओं को कमजोर कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। शुभ रात्रि।